कायरव, तुम्हें ये होटल मेरे नाम करने की क्या ज़रूरत थी? तुमने मुझे इस बारे में पहले कुछ बताया भी नहीं। तुम्हारी फैमिली पहले ही हमारे रिश्ते के अगेंस्ट है, अब तो वो मुझसे और ज्यादा नफरत करेंगे। रात के 12 बज रहे थे। कुछ देर पहले ही फ्री होकर कायरव और इनाया रूम में आए थे, और अब फ्रेश होकर चेंज करने के बाद इनाया ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हाथ पर मॉइस्चराइजर लगा रही थी। नाराज़गी भरी निगाहें मिरर में दिखते कायरव पर टिकी थी, जो लैपटॉप सामने रखे होटल के बारे में पब्लिश हुए आर्टिकल्स पढ़ रहा था। ज़रूरत थी इसीलिए मैंने ऐसा किया है। रही बात मेरी फैमिली की, तो उनकी चिंता तुम मत करो, मुझे पता है उन्हें कैसे हैंडल करना है। कायरव ने नज़र उठाकर उसे देखने की भी जहमत नहीं उठाई। उसका बेफिक्री भरा जवाब सुनकर इनाया ने खींचते हुए नाक से कोड़ी और उठकर सीधे रूम से बाहर चली गई। कायरव ने एक नज़र उसे देखा, फिर गहरी सांस छोड़ते हुए लैपटॉप बंद किया और उठकर बालकनी में आ गया। इनाया रेलिंग पकड़े खड़ी चांद तारों से सजे खुले आसमान को देख रही थी। चेहरे पर नाराज़गी साफ झलक रही थी। कायरव उसके पास आकर खड़ा हो गया। इनाया बिना उसे देखे उससे दूर हो गई। अब तुम किस बात पर नाराज़ हो? इनाया ने तुरंत नज़रें घुमाई और हल्के गुस्से से बोली, तुम अब यहाँ क्यों आए हो? जाओ, जाकर अपना काम करो, वही काम जिसमें तुम इतने बिजी थे कि ना तो तुम्हारे पास मेरे तरफ देखने का टाइम था और ना ही मेरी बात सुनने का। तुमने कहा था ना कि मैं टेंशन ना लूँ, वो तुम्हारा मैटर था, तुम खुद हैंडल कर लोगे, तो अब मैं तुम्हारे मैटर से दूर रहूँगी, तुम भी मुझसे दूर रहो। इनाया, हुआ क्या है तुम्हें? इतना नाराज़ क्यों हो तुम? कायरव ने परेशान निगाहों से उसे देखा। उसे यूं अनजान बनते देखकर इनाया खींच गई और घूरते हुए बोली, तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ है, क्यों नाराज़ हूँ मैं? यह अनजान बनने का नाटक कर रहे हो ताकि मुझसे सुन सको? तो ठीक है, मैं ही बता देती हूँ तुम्हें। नहीं, एक्चुअली तुम बताओ मुझे, तुमने ये होटल मेरे नाम क्यों किया? तुम क्या सबको ये प्रूव करना चाहते हो कि वो मेरे बारे में जो सोचते हैं बिल्कुल सही है, मैं गोल्ड डिगर हूँ? ऑफकोर्स नॉट। तुम जो नहीं हो मैं तुम्हें वो क्यों बनाऊंगा? लेकिन जो तुमने किया है उसके बाद सबको यही लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे पैसों और प्रॉपर्टी के पीछे हूँ। तुमने ये होटल मेरे कहने पर मेरे नाम किया है, जबकि मुझे तो अब तक इसके बारे में कुछ पता तक नहीं था। इनाया गुस्सा भी थी और नाराज भी, बात में पॉइंट भी था। ऐसा नहीं है इनाया, अच्छा इधर आओ और मेरी बात सुनो। कायरव ने उसे उसके हाथ को पकड़ना चाहा, पर इनाया उससे और दूर हो गई। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात। एक तो पता नहीं क्या सोचकर तुमने ये फैसला लिया है, और मुझे कुछ बताया तक नहीं। मुझे आज पता चला है कि तुमने ऐसा कुछ किया है। इट वॉज अ सरप्राइज फॉर यू। कायरव, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारा साथ और तुम्हारा प्यार चाहती हूँ, इनाया ने संजीदगी से कहा। वो तो तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? मैंने ये होटल तुम्हारे नाम करके तुम्हारे फ्यूचर को सिक्योर किया है। देखो, लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, यहाँ कब किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता, और मेरी फैमिली का कोई सपोर्ट तुम्हें कभी मिलेगा नहीं। तो मैंने एज अ हस्बैंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, तुम्हारे फ्यूचर को सिक्योर किया है, ताकि इनकेस अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे पीछे तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। कायरव, इनाया ने बेचैनी से पुकारा। कायरव ने उसे आगे कहने ही नहीं दिया और गंभीरता से बोला, दादू ने भी किया था दादी के लिए, हमारा घर आज भी दादी के नाम है। दादू ने घर दादी ने नाम करके उनका फ्यूचर सिक्योर किया था कि अगर डैड और मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह मोड़ लें तब भी दादी को कोई प्रॉब्लम ना हो, वो हम पर डिपेंड ना रहे और उन्हें उस घर में वो इज्जत मिलती रहे जो उनके होने पर मिलती थी। मॉम के नाम तो पूरा मॉल है, वे भी अपनी ज़रूरतों के लिए डैड पर डिपेंडेंट नहीं है, ये दादू ने उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए करवाया था। अगर वो होते तो जो मैंने किया उसके सपोर्ट में होते, और दादी ने ये हवेली मेरे नाम की थी, मैंने उनकी परमिशन के बाद ही ये डिसीजन लिया है, और जो किया है सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, इसीलिए तुम इस बात के बारे में सोच सोच कर परेशान होना बंद कर दो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचती है, मैं जानता हूँ कि तुम कैसी हो, तुम जानती हो कि सच क्या है, और दादी का सपोर्ट हमारे साथ है, इतना बहुत है। रही बात मेरे पेरेंट्स की, तो उनकी टेंशन भी तुम मत लो, उन्हें कैसे हैंडल करना है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन मैं इस होटल का करूँगी क्या? मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, और तुमने तो कहा था कि हमारी शादी की वजह से जो लॉस तुम्हारे डैड को हुआ है उसकी रिकवरी इस होटल से होगी। मुझे तो अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? इनाया बुरी तरह उलझी परेशान सी कायरव को देखने लगी। कायरव आगे आया और उसकी दोनों हथेलियों को अपनी हथेलियों में थाम लिया। तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, इस होटल को मैनेज मैं करूंगा और तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। ये होटल तुम्हारे नाम है, मतलब लीगली तुम ओनर हो, लेकिन अभी इस होटल से जो भी प्रॉफिट होगा उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। 25% होटल के मैनेजमेंट और स्टाफ के लिए ताकि ऑपरेशन स्मूथ चले, 25% तुम्हारे अकाउंट में, क्योंकि ये होटल तुम्हारे नाम पर है तो तुम्हारा राइट है इस पर, और इसे तुम जैसे चाहे वैसे यूज कर सकती हो। बाकी 50% रायचंद एम्पायर को मिलेगा, ताकि उस लॉस की रिकवरी हो सके जो इस हमारी शादी की वजह से हुआ था। इस शेयर को कंपनी कहीं और इन्वेस्ट कर सकती है, कुछ न्यू स्टार्ट कर सकती है जिससे रेवेन्यू के और सोर्सेज जनरेट होंगे, और ये अरेंजमेंट तब तक रहेगा जब तक मैं इस बिजनेस में तुम्हारे साथ हूँ। अगर कभी हम अलग हुए या मुझे कुछ हो गया तो फिर पूरा होटल और इसका 100% प्रॉफिट तुम्हारे नाम ट्रांसफर हो जाएगा। उस वक्त रायचंद कंपनी की पार्टनरशिप खत्म मानी जाएगी और तुम इसे अपनी मर्जी से चला सकती हो या बेच भी सकती हो। तब तक मैं तुम्हें ऑपरेशन से लेकर क्लाइंट हैंडलिंग तक हर फील्ड में ट्रेंड कर दूंगा। सी, मैंने सब कुछ प्लान किया हुआ है। तुम बेवजह ही इतनी टेंशन ले रही हो। इनाया इस खुलासे से इस कदर हैरान थी कि टकटकी लगाए उसे देखती ही रह गई। तुम सच में एक बिजनेसमैन हो, मैं तो कभी इतना कुछ नहीं सोच पाती। यस, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और उसके साथ ही अब तुम्हारा हस्बैंड भी हूँ। कंपनी के साथ साथ मुझ पर तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं इनमें से किसी एक को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। कंपनी के साथ वहाँ काम करने वाले लाखों करोड़ों लोगों का फ्यूचर जुड़ा है और मुझे तुम्हारे फ्यूचर को भी देखना है, इसीलिए मैंने एक बीच का रास्ता निकाला है। अब तो तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं? नहीं, इनाया ने झट से इनकार में सिर हिलाया, उसके सीने से लग गई। थैंक्स मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे इस डिसीजन में तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन मुझे सच में तुम्हारे प्यार और साथ के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस चाहती हूँ कि तुम हमेशा यूं ही मेरे पास रहो। जब तक मैं हूँ हम ऐसे ही साथ रहें। आई नो, आई प्रोमिस यू, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं हम ऐसे ही साथ रहेंगे। इसके आगे कायरव ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो उससे कोई झूठा वादा नहीं कर सकता था। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं था और इनाया भी ये बात जानती थी, तभी उसका दिल बेचैन था। कायरव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। बप्पा, मुझे ये होटल, पैसे, कुछ भी नहीं चाहिए। आप बस मेरा साथ देना कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाऊं और कायरव मेरे आखिरी सांस तक ऐसे ही मेरे साथ रहे। आपने बचपन में ही मुझसे मेरी आई का प्यार छीन लिया था। कायरव को कभी भी मुझसे दूर मत करना। इनाया ने सच्चे दिल से प्रार्थना की थी। उसकी आंखों में नमी थी और मन में एक उम्मीद कि पप्पा यहाँ उसे निराश नहीं करेंगे। इनाया, तुम्हें मेरा सरप्राइज पसंद आया या नहीं?
इनाया ने सीने से सर बाहर निकाला। कायरव आंखों में सवाल लिए उसे ही देख रहा था। इनाया के लब हल्के से खिंच गए। तुम्हारा ये सरप्राइज मेरे लिए किसी शौक से कम नहीं था, लेकिन तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, अच्छा लगा मुझे। मतलब तुम्हें सरप्राइज पसंद आया, राइट? कह सकते हो? तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी रिटर्न गिफ्ट में मुझे कुछ देना चाहिए? कायरव का सवाल सुनकर इनाया कन्फ्यूज हो गई। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं बताऊं? तुम्हें चाहिए तो तुम ही बताओगे ना? इनाया जरा उलझी। कायरव के होठों पर शैतानी रहस्यमयी मुस्कान बिखरी थी। उसने इंटेंस निगाहों से उसे देखा। सच में बता दूं? श्योर ना बता दूं? कायरव सस्पेंस क्रिएट करते हुए उसके तरफ धीरे धीरे झुकने लगा। इनाया अपनी पलकों को फड़फड़ाने लगी और आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखते हुए धीरे से सर हिला दिया। अगले ही पल कायरव ने इनाया की कमर को थामते हुए और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। इनाया बुरी तरह से हर उठी। टू बी कंटिन्यूड।